बेशक सबसे पहली इबादत का जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़ है। इसको खैर व बरकत दी गई और तमाम जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत बनाया गया, यानी हिदायत के सूते वहाँ से फूटे। ज़रा सोचिए कैसे, एक इब्राहीम और उसकी बीवी और बच्चे की कुर्बानी थी, एक ख़ानदान, एक फैमिली, एक घराने का सब्र था। उन्होंने कहा हम अपने घर के तकाजे ज़रा कम कर लेते हैं और कदम तो बढ़ाएं। उस वक्त अगर कोई होता तो इब्राहीम और बीबी हाजरा और उनके बच्चे के बारे में कहता, तुम कैसे जज्बाती हो गए हो, क्या हो गया तुम्हें, लो एक वीरान मंजर, उसने किसने आना है उधर, कौन होगा। और हकीकत है कि उस वक्त कोई वहाँ बंदा ना बशर था, लेकिन इब्राहीम चूँकि फोकस थे, उनको ये पता था कि चूँकि मैंने कोशिश करनी है, मेरा काम कोशिश करना है, मेरा रब मेरी उस कोशिश में बरकत डाले ना डाले, मैंने अपना काम करके रहना है। फिर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने वाली अबाबील की तरह कि जिसने कहा कि मेरी तो चोंची छोटी है, मत सोचे लोग नहीं आएंगे, मत सोचे काम नहीं होगा, हमारी इन कोशिशों से क्या होगा, दुनिया में इतनी बुराइयाँ फैल गई, कुछ नहीं होगा, मुझे तो बस अपना काम करना है और करते जाना है। फिर अल्लाह ताला देखिए जिस तरह आज मक्का को आबाद किया, जिसे आज हरम को आबाद किया, क्या इब्राहिम को पता था। और हमारा ईमान है जो दुनिया से चला गया, उसके रास्ते कट गए, लेकिन क़यामत के दिन जब वो बेहिसाब अजर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसी तरह हो सकता है आज हमारी कोशिशों का कोई ज़ाहरी नतीजा ना भी दिखे, जो हम कोशिश करते हैं या जितनी करते हैं उतना असर ना निकले, जो एस्टीमेट होता है उतना फ़ायदा लोग ना उठाएं, तो क्या हुआ। याद रखिए ये बात, मैं बार बार अपनी सवीलुल जन्ना क्लास वालों को भी कहती हूँ, लिख लें कि दुनिया के अंदर अगर किसी काम से कोई बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाता है, इसका ताल्लुक हमारे अजर से कुछ भी नहीं है, कुछ असर नहीं पड़ता इस पर। दुनिया की कामयाबी या नाकामी ये हमारे अजर को मुतय्यन नहीं करती। एक बंदे की दावत पे सिर्फ एक बंदा आता है और एक बंदे की दावत पे 100 लोग आ जाते हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाय 100 लोग आ गए, लेकिन बाज़ दफ़ा इखलास की बुनियाद पे वो एक बंदा भी उस 100 के अजर को पहुंच जाता है। असल ज़रूरत है कि अपने अंदर इखलास पैदा करने की, अपनी तबीयत पे काबू पाने की, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कितनी चीज़ें आसान करेगा। गुस्से का टॉपिक है ना, गुस्सा असल में नफ्स पे काबू पा के हासिल होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको सेल्फ़ कंट्रोल सिखाते हैं कि तुम आओ फिर देखो कि अल्लाह ताला तुम्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्तों पर कैसे चलाता है, और ये कैसा घर था जिसमें खुली खुली निशानियाँ हैं। यह इब्राहीम के खड़े होने की जगह है, और इसका हाल यह है कि जो इसमें दाखिल हुआ वो अमन में आ गया। लोगों पर अल्लाह का हक यह है कि जो इस घर तक पहुंचने की इस्तेआत रखता हो वो इसका हज करे। जो कोई इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। कहो ए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो, जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। यहाँ ज़रा इस जुमले को बदल के हम अपने ऊपर लेके देखें, ए मुसलमानों तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो, जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। क्या इस जुमले में कोई गलती है, सच है ना। कल के अहले किताब आज के मुसलमान बिल्कुल वही हालात साबित करने लगे। अल्लाह ताला कहता है मुझे तुम्हारी हर बात की खबर है। कहो ए अहले किताब, ये तुम्हारी क्या रविश है, जो अल्लाह की बात मानता है इसे भी तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो और चाहते हो कि वो टेढ़ी राह पर चले, हालांकि तुम खुद इसके राह रास पर होने पर गवाह हो, तुम्हारी हरकतों से अल्लाह गाफिल नहीं। यानी कल तक तो तुम खुद लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, आज तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से हटाने वाले हो गए, ये क्या बात है, ये ना समझ में आने वाली गुत्थी है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुमने अहले किताब में से एक गिरोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर कुफर की तरफ फिर ले जाएंगे। तुम्हारे लिए कुफर की तरफ जाने का अब क्या मौका बाकी है। कितनी राह देने वाली आयत है, ये फिर ले जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं अब कोई हुज्जत है इस्लाम को छोड़ के पीछे जाने की, कुरान को छोड़ कर पीछे जाते हो। देखिए जब बंदा कुरान की तरफ आता है या इस्लाम की तरफ आता है या हिदायत की तरफ आता है तो उसके इर्द गिर्द के शैतानों और शैतान नुमा इंसानों को घबराहट होने लगती है, वो गुस्से में पेचो ताप खाने लगते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुम पीछे पलट कर दुश्मनों को खुश करोगे, शैतान को तुम पे हंसने का मौका मिलेगा, तुम्हें हो क्या क्या है, जबकि तुमको अल्लाह की आयत सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल मौजूद है। यानी अभी तो रसूल भी मौजूद है और तुम मदीना के यहूद की बातें सुन के या मक्का वालों की बातें सुन के पलटने लगते हो। حالانکہ حقیقت کیا تھی کہ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ کیا حق ہے؟ انسان تو اتنا ہی ڈرے گا جتنا خود ڈر سکتا ہے، اور اللہ اتنا ڈرنے کا حکم دیتے ہیں جتنا حق ہے۔ اللہ کی ذات کو ذرا سامنے لا کے دیکھیں، تصور میں لائیے اس کے الجبار، اس کے القہار ہونے کا، اور اس کے الودود اور الرحیم اور الرحمن ہونے کا۔ اس کی جتنی صفات ہیں، کیا اس کی ناراضگی سے ہمیں ڈرنا چاہیے؟ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ لیکن لوگ ڈرتے ہیں اتنا جتنا ڈر سکتے ہیں، اور اتنا بھی نہیں ڈرتے، اور کہتے ہیں بس بھئی اب نیکیاں تو کرتے ہیں، اب ہمارا حال اللہ کو پتہ ہے۔ اس کو تو پتہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے تم اتنا نہ ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، بلکہ اتنا ڈرو جتنا تم کو ڈرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کانپنے لگے اس آیت کو سن کے، اتنا لرزہ طاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی کتنا ڈریں، ہم تو بس اپنی بشریت کے تحت ڈریں گے، تو اللہ سے ڈرنے کا حق اتنا وہ تو ہم نہیں کر پاتے۔ بالآخر قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، چلو اللہ سے اتنا ڈر لو جتنا ڈر سکتے ہو۔ پھر ان کو چین آیا۔ میں سوچتی ہوں کہ قرآن پاک آج تو کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے نا، اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، آج کے ڈیجیٹل قرآنوں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن کل صحابہ کرام کے دلوں پر لکھا ہوا تھا۔ وہ ہر آیت کو اپنے دل کی تختی پر لکھتے تھے۔ دعا کریں کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، ہر آیت سنتے وقت اپنے آپ کو چیک کریں، یہ میرے لیے، اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈر مانگنا چاہیے، اس کا اللہ کی نبی کی دعاؤں میں ملتا ہے، اللہم انی اسلک الہدا والتقا، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے اپنا تقویٰ دے۔ مانگے اللہ تقویٰ دے، مانگنے سے آئے گا۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی مل جاتی ہیں، لیکن تقویٰ شعور کے ساتھ ملتا ہے، اور جتنا تقویٰ آئے گا اس کا ایک اثر ہوگا، اور وہ کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھڑے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ کون سی آگ تھی یہ؟ فرقہ واریت کی آگ تھی، تفرقہ بازی کی آگ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ یہاں تقویٰ کا اثر دکھایا، اور وہ کیا؟ کہ جو بندہ دل سے متقی ہو جاتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ اس کی داڑھی نکل آتی ہے، اس کے چہرے پہ نقاب آ جاتا ہے، کیا وہ ہاتھ میں ہر وقت مسواک، تسبیح اور ٹوپی پکڑے رکھتا ہے؟ یہ سائڈ کی باتیں ہیں، اہم، اس کا کوئی مذاق نہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ لیکن تقویٰ کا جو لازمی اثر ہے وہ کہہ کہ انسان اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے کام کرتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے دین کا کام نہیں کرتا کہ میرا دل چاہ رہا ہے، مجھے ثواب ہوگا تو میں کروں گا، بلکہ وہ اللہ کے دین کو فائدہ دینے کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ اپنے نام، اپنے گروہ، اپنے کنبے، اپنے فرقے کے بڑھتے ہوئے نام کو دیکھ کر نہیں پھلتا پھولتا، وہ اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھتا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اللہ کے نبی کی حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق 73 فرقوں میں بٹ چکی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تقویٰ کا نہ ہونا، خوف کا نہ ہونا۔ آپ کو مثال دوں گی چھوٹی سی، کہ چار لوگ ایک کمرے میں بیٹھے لڑ رہے ہوں، ہو سکتا ہے ایک ماں بیٹی، بہن بھائی، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، سب لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے دس، دوسرا کہتا ہے دیٹ، دوسرا کہتا ہے یہ وہ، خوب تو تو میں ہو رہی، سب لڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے تم یہ کہہ رہی، دوسرا کہتا ہے میرا خیال یہ، اختلاف رائے ہو گیا۔ اتنے میں اس کمرے میں ایک چھپکلی دکھ جائے، سانپ دکھ جائے، کیا ہوگا؟ یاد رہے گا ان کو اس سے پہلے جس بات پہ لڑ رہے تھے؟ بھول جائے گا نا۔ تو بس یہ ہے جواب آج کی امت کو جوڑنے کا، خدا کے لیے کوئی اٹھے اور ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرو کے امت محمدیہ کے نام پہ جوڑ دے، ان کو مسلمانی کی لڑی میں پرو دے۔ آج جو سارے لڑ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ موت کا ڈر نہیں رہا، सांप का डर लोगों के खिलाफ भुगला सकता है, छिपकली का डर भुला सकता है, कॉकरोच को देख के भूल सकते हैं, क्यों किसी को अपनी मौत का डर नहीं, क्यों कब्र का डर नहीं, क्यों हिसाब डर का डर नहीं? आज दीन के नाम पर हमने इजारादारियाँ ना कायम कर ली क्या? आज हमने दीनी इदारों को अपनी बड़ी बड़ी जायदादें ना समझ लिया? इन एंड आउट हमारे हाथ में ना हो गया? साइन इन और साइन आउट हमारी मर्जी का ना हो गया? वजह क्या? क्या अल्लाह का डर नहीं है? देखिए, लोग दीन का काम करते हुए भी मत सोचिए कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं। मैं ख़ुद अपने आप को सामने रख लूँ, मैं इस वक्त आपको पढ़ा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा आपको सर्व कर रहा है। ये चंद दिन की सिर्फ खेती लगी हुई है जो आप सब नॉर्वे वाले देख रहे हैं, एक साल तक नहीं हुआ आप सबको, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने साथी अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के कलाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। मत सोचिए कि ये सिर्फ अल्लाह के लिए हो रहा है। हो सकता है हमारा यही मंसूबा हो कि हम बस अपना नाम जहाँ रखें, यहाँ अपनी इमारत बनाएं, हम अपने इदारे का नाम जहाँ करें, इंस्टीट्यूट बनाएं। ये वो चोर छुपी के दरवाजे होते हैं जो दीनदारों को खुद भी नहीं पता होते। याद रखिए, कभी किसी को मत तनकीद से देखें, खुद कभी दीन की जगह पे आएं। यानी मैं इस बात पे खौफ सदा हो गई कि कहीं आप यहाँ से उठ के ये ना कहने लग जाएं कि सारी मस्जिदों वाले गलत काम कर रहे हैं। मत सोचें किसी को, ना करें तनकीद। हमारा पैगाम मोहब्बत है, नफरत नहीं है, काटना नहीं जोड़ना है। हमने अपना एक अलग इदारा नहीं बनाना, हम कोशिश करेंगे सारे दीनदारों को जमा करें, हमें थोड़ी जगह दे दो, आओ मिलके वो काम हम कर लें जो हम कर सकते हैं, और जो तुम कर रहे हो वो तुम करते रहो। एक बंदा हर काम नहीं कर सकता, लेकिन जब दिल तंग होते हैं, जब खौफ सदा होने लगता है, जब इंसान को ये खौफ होता है कि एक नया नाम आ गया, अब एक नया काम होने लगा, वो ये भूल जाते हैं कि इस्लाम को क्या फ़ायदा हो रहा है, वो ये भूल जाते हैं कि हमारी बहू बेटियों को, हमारी औरतों को कितना फ़ायदा हो रहा है, और वो इस मुखालफत में आने लगते हैं। तो याद रखिए, फिर ये इस बात की पेशनखोई है कि वो काम अपनी ज़ात के लिए तो हो रहा है, अल्लाह के दीन को प्रमोट करने के लिए नहीं। जब तक उम्मत मुस्लिमा जमा नहीं होती, हर बंदा अपनी स्किल्स नहीं लगाता, काम नहीं बनेगा। अब देखिए कि दुनिया में आप कई काम करते देखते हैं, अगर एक फील्ड के लोग हैं कि हम सारे बस अपना काम खुद करेंगे, चले छोड़ दें, बड़ी बड़ी बातें तो मुझे करनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे सामने ज़्यादा खवातीन बैठी होती हैं घरेलू काम करने वाली। सिर्फ एक वक्त का खाना पकाने को आप देख लीजिए, अगर आप ये कहें ना कि मैं किसी दूसरे को साथ नहीं मिलाऊँगी, तो आप सिर्फ एक दिन का अपना घर नहीं चला सकती, नहीं, साथ मिलाना पड़ेगा। किसी से आपको सब्ज़ी कटवानी पड़ेगी, किसी से घर साफ करवाना पड़ेगा, किसी से बाहर से ग्रोसरी लानी पड़ेगी, कोई पकाएगा, कोई सर्व करेगा, फिर एक छोटी सी दावत तैयार होती है। और अगर आपके नहीं मैं सब कर लूँगी, तो कर तो लेंगे लेकिन क्वालिटी का नहीं होगा। जब हम मुसलमान ये सोच के बैठते हैं ना कि हम खुद सर्व कर लेंगे, मिसाल है कि एक शख्स से इमामत करा सकते हैं, वो इमाम है, वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ा सकते हैं, उनका काम यही है कि उनको पूरी नमाज़ सही तरह से आती हो और वो सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ाएं, साथ उनको कुरान का हिस्सा भी हिफ्ज़ करना है। अब ज़रूरी नहीं कि जो इमाम साहब हैं वो आलिम भी हों, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो खुतबा देने आएगा उसको खुतबा देना है, लेकिन फिर उसके अंदर कई और काम भी होंगे जिसका ताल्लुक मुसलमानों के हकूक़ से होगा, कुछ का तालीम से होगा। ये सारे अपनी स्किल्स को जमा करके अगर एक जगह ले आते हैं इस्लाम के बैनर के नीचे, तो फिर आप देखेंगे क्या होगा। फिर वो होगा जो दौरे फारूकी में हुआ, जो दौरे उस्मानी में हुआ, और जो दौरे अबू बकर में हुआ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आज दिलों को जोड़ दें। अल्लाह कह रहे हैं, याद नहीं वो वक्त के तुम क्या थे? आज भी देखिए, दुश्मन हमारे सर पे कूक रहा है, हर लम्हे हमें धमकी मिलती है, हर लम्हे हम मारे जा रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। कभी किसी ने इस नाम पे मारा, या किसी दुश्मन की गोली में कोई इसलिए मरा कि बताओ तुम हनफियों के, शाफियों के, हम्बलियों के, अहले हदीसों के, वहाबियों? और हम बचाने वाले कहते हैं नहीं, हम सिर्फ हनफियों को बचाएंगे, हम सिर्फ मालकियों को बचाएंगे, नहीं नहीं हम सिर्फ वहाबियों को बचाएंगे। ये वो नासूर है जिसने आज उम्मत की सारी ताकत ले ली, जैसे जिसम में गिल्टी हो जाती है ना, वो सारी ताकत लेके उसको खींच लेती है, होता क्या कि वही गिल्टी फिर कैंसर बन जाती है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के पास एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है, इंसान बहुत है, मैन पावर बहुत है, लेकिन वो गलत जगह पे जा रही है, गलत जगह पे जा रही है। सब का हल एक है कि वही काम करो जो अल्लाह के नबी ने किया, वही तरीका इख्तियार करो। अब इसके लिए करना क्या है? फरमाया, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदून इलल खैर, तुम में से कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएँ, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। सच है कि नहीं? अब मस्जिद बनाते हैं कि लोग नमाज़ पढ़ें, आगे नमाज़ पढ़ने, ये कौन बताएगा कि नमाज़ पढ़नी कैसे है, ठीक भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? रमज़ान के रोज़े हैं, آپ نے خوب افطاریوں اور سحریوں کا انتظام کر دیا اپنی اپنی جگہوں پہ، یہ کون بتائے گا کہ روزہ کیسے ٹھیک ہے، نہیں رکھنا، کس کو رکھنا ہے، کس سے ٹوٹے گا؟ علم کی ہے، یہ میرے سامنے کمپیوٹر رکھا ہے، دو کی بجائے چار رکھ دیجئے، مجھے چلانے ہی نہیں آتے، بیکار ہے۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو علم دیا جائے، اس وقت جو خدا خوفی پیدا کرنے کی چیز اللہ کی کتاب، اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ آسمان سے لٹکی ہوئی رسی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو برائیوں سے روکو گے، نیکیوں کی دعوت دو گے، تمہاری امت فلاح کی طرف آئے گی۔